आज हम लोग आवृत्ति करेंगे श्रीमद्भागवतम के चतुर्थ स्कंध के 31 अध्याय का श्लोक 30 और 31। चतुर्थ स्कंध का अंतिम श्लोक है ये। आवृत्ति करेंगे और क्लास होता है तो चतुर्थ स्कंध समाप्त हो रहा है तो थोड़ी सी परीक्षा भी हो जाएगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्री शुक उवाच इति आनम्य तं आमन्त्र्य विदुरः गजसाह्वयं श्वानां दिदृक्षु प्रययौ ज्ञातीनां निर्वृताशयः। श्रीशुक उवाच इत्यानम्यतमामन्त्र्य विदुरो गजसाह्वयम् श्वानां दिदृक्षुः प्रययौ ज्ञातीनां निर्वृताशयः। श्रीशुक उवाच इत्यानम्यतमामन्त्र्य विदुरो गजसाह्वयम् श्वानां दिदृक्षुः प्रययौ ज्ञातीनां निर्वृताशयः। श्रीशुक उवाच इत्यानम्यतमामन्त्र्य विदुरो गजसाह्वयम् श्वानां दिदृक्षुः प्रययौ ज्ञातीनां निर्वृताशयः। इत्यानम्यतमामन्त्र्य विदुरो गजसाह्वयम् श्वानां दिदृक्षुः प्रययौ
you
श्री शुक उवाच, श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा इति इस प्रकार आनम्य नमस्कार करके तम मैत्रेय को आमंत्र्य अनुमति ले करके विदुरः विदुर गजसाह्वयम् हस्तिनापुर नगरी को स्वानाम अपनी दिदृक्ष देखने के लिए इच्छुक प्रयज वहाँ से चला गया। ज्ञाति नाम अपने परिजनों का निर्वृताशय भौतिक इच्छाओं से मुक्त। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। अनुवाद, सुखदेव गोस्वामी ने कहा इस प्रकार मैत्रेय मुनि को नमस्कार करके और उनसे अनुमति लेकर भौतिक इच्छाओं से रहित विदुर ने अपने परिजनों से मिलने के लिए हस्तिनापुर के लिए प्रस्थान किया। तात्पर्य, जब संत पुरुष अपने परिजनों से मिलना चाहते हैं तो उनके मन में मिलने की भौतिक इच्छा नहीं रहती, वे उन्हें केवल ऐसे उपदेश देना चाहते हैं जिससे वे लोग लाभान्वित हो सकें। विदुर का संबंध है कौरवों के राजघराने से था, यद्यपि वे जानते थे कि परिवार के सारे लोग कुरुक्षेत्र में मारे जा चुके हैं, तो भी अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र से यह देखने के लिए मिलना चाहते रहे थे कि उनका माया के चंगुल से उद्धार हो पाया है अथवा नहीं। जब विदुर जैसा संत पुरुष अपने परिजनों से मिलना चाहता है तो उसकी एकमात्र अभिलाषा उन सबको माया के चंगुल से उद्धार करना होता है। इस प्रकार विदुर ने अपने गुरु को सादर नमस्कार किया और कौरवों के राज्य में स्थित हस्तिनापुर के लिए प्रस्थान किया। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। हम लोग बहुत दिन से विदुर जी और मैत्रेय जी के संवाद को सुन रहे हैं। विदुर जी प्रश्न किए, मैत्रेय जी उत्तर दिए और कह रहे हैं कि इति आनम्य। जब विदुर जी और मैत्रेय ऋषि कथा श्रवण करा रहे थे, भागवत की कथा सुनाए, उस क्रम में विदुर जी प्रचेताओं के विषय में प्रश्न किए थे। जब प्रचेताओं के विषय में उनको उत्तर मिल गया, प्रचेताओं की कथा सुने, और इसके बाद विदुर जी अपना सुख का अनुभव मैत्रेय जी को अर्पित किए। विदुर जी बहुत सुख अनुभव किए, क्योंकि इमाम तो कौसार विणोप वर्णिताम छत्ता निशम्या जितवाद सत्कथा। भगवान की कथा को सुन करके प्रवृद्ध भाव, अश्रुकुला कुलो मुने हैं दधार मूर्धना चरणम हृदाहर। इस कथा को सुन करके विदुर जी की भक्ति बहुत बढ़ गई, प्रवृद्ध भाव। उसका लक्षण आ रहा था कि अश्रु कला कुल, उनके आंख से अश्रु बिंदु निकल रहे थे और भाव में आकुल हो गए। दधार मूर्धना चरणम हृदाहर, भगवान के चरण को अपने हृदय में धारण किए, उसका स्मरण करने लगे और मैत्रेय ऋषि से कहने लगे कि स्वयं मध्य महाजोगिन भवता करुणात्मना, हे महाजोगिन आप बहुत कृपालु हैं और अपने कृपा के बल से हमको उस मार्ग का उपदेश दे दिए जो प्रकृति से परे है, भक्ति का उपदेश दिए और उस भक्ति के उपदेश से हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, उस भक्ति के आधार पर उसके अवलंबन से कोई भी व्यक्ति भगवान का दर्शन कर लेता है। भगवान का विशेषण देते रहे हैं कि अकिंचन गह, भगवान तो जो अकिंचन हैं उन्हीं के अनुभव के विषय बनते हैं, उन्हीं के दृष्टि के विषय बनते हैं। तो आप हमको ऐसा मार्ग प्रदान किए कि हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, उनका अनुभव कर सकते हैं, उनका दर्शन कर सकते हैं। और ऐसे वे आभार प्रकट करते हुए विदुर जी को नमस्कार किए और कह रहे हैं कि तम आमंत्र्य। कथा के समापन पर विदुर जी को नमस्कार किए, मैत्रेय जी को नमस्कार किए और उनसे मंत्रणा लिए, उनकी अनुमति लिए और फिर उनको नमस्कार किए और श्वानम दिदृक्षु प्रयोग और अपने संबंधियों को देखने के लिए गजसाहवयम प्रयोग वे हस्तिनापुर चले गए। कथा कहाँ सुन रहे हैं मैत्रेय जी से? हरिद्वार में, हरिद्वार में भेंट हुई थी द्वारी दुनद्या ऋषभ कुरुना। और मैत्रेय जी से वहाँ प्रश्न किए थे, मैत्रेय जी उत्तर दिए, बहुत आनंद अनुभव किए, अपना आभार प्रकट कर रहे हैं और मैत्रेय जी को नमस्कार कर रहे हैं, उनसे मंत्रणा लेकर, उनसे मंत्रणा करके, उनकी अनुमति लेकर के अपने बंधुओं के दर्शन के लिए हस्तिनापुर गए। और विदुर जी के विषय में कह रहे हैं कि निर्वृताशय, वो किसी आसक्ति से, राग से हस्तिनापुर नहीं जा रहे हैं, उनका हृदय भगवान के भक्ति से भरा हुआ प्रवृद्ध भाव। और सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि निर्वृताशय, जब हृदय भक्ति से भरा है तो स्वाभाविक ही हृदय में आनंद भर जाता है, क्योंकि भक्ति अतरंगा शक्ति की वृत्ति है, आनंद उसका स्वाभाविक गुण है। और किसी राग से प्रभावित होकर के नहीं जा रहा है, वे भक्ति से परिपूर्ण है और आनंद से परिपूर्ण है। तो यह शब्द दे रहे हैं निर्वृताशय, भीतर बहुत आनंद है लेकिन अपने बंधुओं के दर्शन के लिए वे हस्तिनापुर गए। आप एक बार याद कीजिए कि इसी तथ्य से मैत्रेय जी विदुर जी के संवाद के विषय में प्रश्न हुआ था। इस बात को पहले भी सूत गोस्वामी बोले हैं, विदुर जी अपने बंधुओं के दर्शन के लिए हस्तिनापुर आए। यह कहाँ है उक्ति, किस प्रसंग में बात आई है परम सुंदर? प्रथम स्कंध में सुत गोस्वामी यह प्रतिज्ञा किए हैं कि बक्षे कृष्ण कथोदयम्, हम परीक्षित महाराज के जन्म कर्म विलापनम संस्थाम च पांडुपुत्राण वक्षे कृष्ण कथोदयम्। ये भागवत प्रारंभ होता है, सुखदेव गोस्वामी के विषय में प्रश्न है, परीक्षित महाराज के विषय में प्रश्न है। तो परीक्षित महाराज के जन्म कर्म के विषय में प्रारंभ किए यह प्रतिज्ञा कर रहे हैं कि हम इस कथा को कहेंगे और इस ढंग से कहेंगे कि कृष्ण कथा का उदय होगा। वो भगवान हस्तिनापुर में रहे और हस्तिनापुर के बाद द्वारिका गए, वे जादुओं से घिर करके और अर्जुन के साथ सार्जुन जदुभिर वृत वे द्वारिकापुरी में प्रवेश किए। हस्तिनापुर की कथा कह रहे हैं, भगवान वहाँ कुछ दिन रहे, उसको कहे भगवान पुनः द्वारका चले गए। अब इसके बाद फिर अब नया जो क्रम चल रहा था उसी को प्रारंभ किए। विदुरस तीर्थ यात्राया मैत्रेयाद आत्मनो गति ज्ञात्वागाद हस्तिनपुरम तया वाप्त विवित्सित। और अब इसी क्रम में परीक्षित महाराज के जन्म कर्म को कहने के लिए सुत गोस्वामी कह रहे हैं कि विदुरस तीर्थ यात्राया, विदुर जी तीर्थ यात्रा में थे और उसी समय उनको मैत्रेयात आत्मनः गति, मैत्रेय ऋषि से आत्मनः गति, आत्मनः गति मतलब आत्मा के गति को, या आत्मनः जो अपना प्रियतम है कृष्ण के गति को, या आत्मा जो सबके प्रिय हैं उनके गति को समझ करके। अब जब भगवान का ज्ञान हो गया और कह रहे हैं कि वे प्रश्न तो बहुत किए थे लेकिन सब प्रश्न का उत्तर नहीं सुने। विदुरस तीर्थ यात्राया मैत्रेयाद आत्मनः गति, आत्मनः गति ये शब्द को समझिए, अपने स्थिति को समझ गए, अपने आत्मा को, देह आत्मा के भेद को, या आत्मनः जो अपने हैं कृष्ण ही अपने हैं उनके स्थिति को समझ गए, या आत्मा प्रिय को कहते हैं जो सबके प्रिय हैं उनके स्थिति को समझ गए। ज्ञात्वा अगात हस्तिनपुर, अब हस्तिनापुर लौट आए, तया वाप्त विवित्सित। जब आत्मज्ञान हो गया अब इसके बाद कुछ जानने की आवश्यकता नहीं रह गई, इससे को लगा कि जो जानने की इच्छा है वो सब पूरी हो गई। कह रहे हैं सुत गोस्वामी कि जावतः कृतवान प्रश्नान छत्ता कौसार वाग्रतः। अब तृतीय स्कंद देखेंगे तो विदुर जी बहुत बहुत प्रश्न किए हैं, श्राद्ध के विषय में, सृष्टि के विषय में, जीव समुदाय के दुखद स्थिति के विषय में बहुत बहुत प्रश्न किए हैं लेकिन सभी प्रश्नों का उत्तर नहीं सुने। जातैक भक्ति गोविंदे तेभ्यश्च चोपर राम। अब भगवान में इतनी भक्ति का उद्रेक हो गया कि अब जो बहुत बहुत प्रश्न थे उसे उपरत हो गए, उसके लिए वे फेरे में नहीं रहे, वहाँ रुके नहीं, बहुत प्रश्न किए हैं। कथा चल रही थी लेकिन बीच से उपरत हो गए। तो सुत गोस्वामी जब यह कह दिए कि विदुरस तीर्थ यात्राया, और विदुर जी तीर्थ यात्रा में ही मैत्रेय जी से मिले, यह बात सुन लिए सौनक जी लेकिन कथा में बाधा नहीं डाले। जब अध्याय का अंत हुआ, स्कंद का अंत हुआ, तब वे पूछे कि कुत्र छत्र भगवत मैत्रेयणा से संगम, ये विदुर जी का मैत्रेय जी से कहाँ भेंट हो गई, और वे अपना घर छोड़ करके तीर्थयात्रा में क्यों गए। जब ऐसे प्रश्न किए तो शौनक जी कहे कि जब विदुर जी के विषय में आप प्रश्न कर रहे हैं तो मैं उत्तर दे रहा हूँ, लेकिन आपके प्रश्न के क्रम में उत्तर नहीं देंगे। ऐसा ही प्रश्न राजा परीक्षित भी सुखदेव गोस्वामी से किए थे। तो सुखदेव गोस्वामी से राजा परीक्षित जैसा प्रश्न किए और वे जैसे उत्तर दिए, तो हम उसी के क्रम से मैं उत्तर दूंगा, आपके प्रश्न के क्रम में उत्तर नहीं दूंगा। परीक्षित महाराज जो प्रश्न किए हैं और सुखदेव गोस्वामी जैसा उत्तर दिए हैं, तो वैसा मैं उत्तर दूंगा। एवं एतत् पुरा पृष्ठ मैत्री कार तो राजा क्या पूछे हैं, तो कह रहे हैं कि कुत्र छत्र भगवता मैत्रेणा सुसंगम कदावा स संवाद एतद वर्ण न प्रभो। कह रहे हैं कि मैत्रेय जी का, मैत्रेय जी से विदुर जी का कहाँ भेंट हुई और कदावा स संवाद, और कहाँ इनसे यह संवाद हुआ, एतद वर्ण न प्रभो, इसका वर्णन कीजिए। न ह्यल्पार्था दयुस्तस्य विदुरस्या मलात्मन, कि विदुर जी जब प्रश्न किए तो कोई साधारण प्रश्न नहीं किए होंगे, वो बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि कह रहे हैं कि अमलात्मन विदुर जी का चित्त तो बिल्कुल शुद्ध है, और वे ऐसा प्रश्न किए होंगे कि जिससे अर्थ का उदय होता है, तो आप उसको बतलाइए। जब इस प्रकार प्रश्न किए तो जैसा सुखदेव गोस्वामी उत्तर दिए हैं उसी को प्रस्तुत किए सुत गोस्वामी। तो आप समझ रहे हैं ना, सुत गोस्वामी विदुर जी का उल्लेख कर दिए, तो शौनक जी प्रश्न किए और शौनक जी के उत्तर को देने के लिए यह कह दिए कि राजा परीक्षित भी विदुर जी के विषय में प्रश्न किए थे, और उसी के अनुसार हम उत्तर देंगे। और शौनक जी प्रश्न किए हैं, बंधु त्याग निमित्तम च तथैवागवतान पुनः, वे क्यों वे बंधुओं का त्याग किए, क्या कारण था बंधुओं का त्याग करना, अपने परिवार का त्याग करना बहुत कठिन कार्य है, दुस्त्यजा। अपने परिवार के लोगों का त्याग कर देना बहुत कठिन कार्य है, और विदुर जी क्यों त्याग कर दिए। कभी कभी व्यक्ति त्याग कर देता है, बहुत बुरी परिस्थिति है, बहुत गरीबी है या बहुत कला है, कुछ ऐसा है, तो व्यक्ति घर का त्याग कर देता है। लेकिन विदुर जी के लिए कहने के रिद्धि मत, उनका घर तो सब प्रकार के समृद्धि से युक्त था, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भगवान प्रविशेषात्म सात कृतम, भगवान विदुर जी के घर को बिल्कुल अपना मान करके उसमें निवास किए, उसमें प्रवेश किए, जबकि भगवान के लिए रुकने के लिए बहुत सुंदर व्यवस्था की गई थी, राजकीय व्यवस्था की गई थी, लेकिन पौरवेंद्र गृहम हित्वा राजा के घर को छोड़ करके और विदुर जी के घर में अपने से प्रवेश किए, बिना इनविटेशन के वहाँ चले गए, ऐसे चले गए मानो अपना ही घर है, अपना घर करके मान करके गए। तो जिस घर को भगवान अपना मान रहे हैं उस घर को छोड़ करके विदुर जी क्यों निकल गए, और ऐसा जब प्रश्न किया गया है तो सुखदेव गोस्वामी उत्तर दिए हैं कि घर की ऐसी स्थिति हो गई, वहाँ ऐसा वातावरण तैयार हो गया कि विदुर जी छोड़ करके चले गए। उसको तृतीय स्कंध के प्रारंभ में कई एक श्लोक में बतलाया गया है, तो हम लोगों को समय नहीं है वो सब चर्चा के, लेकिन आप एक बार स्मरण कर लीजिए। ये सुखदेव गोस्वामी कहने लगे, विदुर जी अपने भाई से बहुत प्रेम करते थे, धृतराष्ट्र से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन धृतराष्ट्र का जब पांडवों के साथ व्यवहार बदलने लगा, वे अधर्म का आचरण करने लगे, विदुर जी कोई अच्छा नहीं लगता। कई एक घटना का उल्लेख कर रहे हैं, वे कह रहे हैं, यदा तु राजा ससुतान बंधु ससुतान असाधुन पुष्णन्न धर्मेण विनष्ट दृष्टि। क्योंकि धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे एक बात है, लेकिन उनका जब विवेक दृष्टि भी नष्ट हो गया। और यदा तु राजा ससुतान असाधु, अपने असाधु दुष्ट प्रकृति के पुत्रों को भी पुष्णन्न धर्मेण अधर्म पूर्वक पालने लगे। देखिए क्या शब्द प्रयोग कर रहे हैं कि अपने पुत्रों का अधर्म पूर्वक पालन कर रहे हैं। वे कैसे पुत्र का, जो दुष्ट प्रकृति के असाधु प्रकृति के, यद्यपि वो छोटे छोटे बच्चे हैं शिशु हैं, और उस समय कुछ अधर्म करके भी बच्चे का पालन कर दिया जाए तो इसको बहुत बुरा नहीं माना जाता है। कुटुंब शब्द का यही अर्थ होता है कि कुत्सित कर्म करके भी जिसका पालन किया जाए। लेकिन सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि यदा तु राजा ससुतान असाधुन पुष्णन्न धर्मेण विनष्ट दृष्टि, उनके पुत्र जो अब सयाने हो गए हैं, कोई शिशु नहीं है, और उनको अधर्म पूर्वक पालन कर रहे हैं, क्योंकि विनष्ट दृष्टि। और जो अपने भाई के पुत्र हैं, भ्रातृजविष्टस्य, छोटे भाई के पुत्र हैं, और विबंधुन, उनके पिता के मृत्यु हो गई है, तो प्रवेश लक्षा भवने ददा, उनको तो लक्षा भवन में प्रवेश करके जला दिए। मैं अपने पुत्र का पालन कर रहे हैं, अब अपने भाई के पुत्र का भी पालन करते तो ठीक था, लेकिन अपने पुत्र का पालन तो अधर्म पूर्वक कर रहे हैं, और अपने भाई के पुत्रों को एकदम जला दिए लक्षा भवन में डाल करके, पाप लग गया जलाने का, इसलिए कह रहे हैं कि जला दिए। अब एक ही घटना नहीं है, कोई एक घटना इसी प्रकार, अगर यदा सभायां कुरुदेव देव्या, जो कुरुकुल की देवी है, पूज्या है, बहू है, और उसको अधर्म पूर्वक घसीट करके लाया गया, सभा में अपमान किया जा रहा था, कैसा विमर्शम सुतकर्म गर्य, कितना गर्हित कर्म है, धृतराष्ट्र के पुत्र बाल पकड़ करके जबरदस्ती द्रौपदी को खींच करके लाए, न बारे या मास नृपस्नुसाया। लेकिन राजा हैं, लेकिन अपने पुत्र वधु के अपमान को रोके नहीं, अपने पुत्रों को मना नहीं किए। पुत्र गलती कर रहे हैं तो पिता का धर्म था कि उनको मना करे, मना नहीं करे। और द्रौपदी के विषय में कह रहे हैं कि स्वाश्रय हरंत्या कुछ कुमकुमानी, द्रौपदी बहुत विलाप कर रही थी, इतना रो रही थी कि स्वाश्रय अपने आंसुओं से, स्वाश्रय हरंत्या कुछ कुमकुमानी, स्तन में लगे हुए कुमकुम को धो रही थी। और सुखदेव गोस्वामी का वर्णन का अजब शैली है, आश्रु के विषय में तो स्पष्ट लिख रहे हैं कि स्वाश्रय हरंत्या, अपने अश्रु से हरण कर रही थी, लेकिन किसके कुमकुम का हरण कर रही है ये नहीं उल्लेख कर रहे हैं, तो दोनों पर घटित होगा। इतना विलाप कर रही थी कि उसके अपने आश्रु से उसके स्तन पर लगे कुमकुम धुल रहे थे, या दूसरे ढंग से अर्थ करें तो रो रही थी द्रौपदी और कुमकुम धुल रहा था जो उसका अपमान कर रहे थे उनके पत्नियों का, और कई एक घटना का उल्लेख कर रहे हैं। इसको भी अब विदुर जी सही लेते थे, लेकिन जब भगवान का अपमान हुआ तो वे घर से निकल गए। बहुत बहुत ऐसी घटना होने लगे तो विदुर जी अपने भाई के यहाँ आना जाना बंद कर दिए। पहले तो रोज जाते थे, धृतराष्ट्र बड़े भाई हैं, उनके पास बैठते थे, लेकिन जब बहुत अधर्म करने लगे, कई एक घटनाएं हो गई, तो जाना बंद कर दिए। लेकिन जब भगवान चैलेंज दे करके चले गए तो धृतराष्ट्र इतने भयभीत हो गए और फिर विदुर को बुलाए, यदो पहुता भवन प्रविष्ट। जब धृतराष्ट्र बुलाए तो विदुर जी उनके घर पर गए, लेकिन घर पर गए भी तो कुछ कहे नहीं। मंत्राय पृष्ठ किल पूर्वजे न, जब उनके पूर्वज अग्रज धृतराष्ट्र सलाह पूछे तब विदुर जी स्पष्ट शब्द में कह दिए। धृतराष्ट्र पूछे कि विदुर बहुत विषम स्थिति आ गई, द्वारकाधीश बहुत कुपित होकर के चले गए और ऐसी ऐसी बात बोले कि उससे हमारा दिल बहुत घबरा रहा है, हमें भय लग रहा है कि कुरुकुल का नाश हो जाएगा। वो विदुर इस विषय में क्या करना चाहिए? वो विदुर जी स्पष्ट शब्द में कहे कि कुरुकुल की रक्षा चाहते हैं तो ये जो मूर्तिमान अधर्म है जिसको आप अपना पुत्र मान रहे हैं, इसका त्याग कर दीजिए, दुर्योधन का त्याग कर दीजिए। दुर्योधन वर्तमान अधर्म है और ये भगवान से द्वेष कर रहा है, और जब तक इसके साथ रहेंगे कुरुकुल के मंगल नहीं है, तो कुरुकुल का मंगल चाहते हैं तो इस मूर्तिमान अधर्म का त्याग कर दीजिए। तो स्पष्ट शब्द में कहे, लेकिन इतना सुनते ही दुर्योधन बहुत कुपित हो गया और वही बोलने लगा, कई न मत्रो को जुहाव जिग्म, अरे इस कपटी को कौन यहाँ बुलाया? अरे बुलाए तो उसके पिता ही थे, विदुर जी कह सकते थे कि आपके डैड बुलाए हैं। वो बहुत क्रोध में हो गया, उसके ओठ कांप रहे थे और ये आदेश दे दिया कि इसका कपड़ा लत्ता छीन लो और उसको पीटते हुए नगर से निकाल दो। ऐसे बोल रहा था, विदुर जी बुलाने से वहाँ गए थे, धृतराष्ट्र बुलाए थे, लेकिन धृतराष्ट्र एक शब्द बोल नहीं रहे थे। अब विदुर जी को ऐसा शब्द बोल रहा था धृतराष्ट्र कि सीधे हृदय में चुभने वाला था, लेकिन विदुर जी माया के प्रभाव को जानते थे। वे जानते थे कि संसार में ऐसा ही होता है, माया बलवती है, तो कोई नवीन बात नहीं है। तो निकालने की बात कह रहा था, अपने से धनुष रखे और निकल गए। तीर्थ में यात्रा करने लगे, यात्रा के क्रम में दक्षिण भारत घूमते हुए फिर जब इसी वृंदावन क्षेत्र में आए तो उद्धव जी से उनकी भेंट हो गई। अब उद्धव जी से अपने स्वजनों की वार्ता पूछने लगे। अब उसी क्रम में उद्धव जी रोते हुए कृष्ण के वियोग का वर्णन किए और उद्धव जी कहे कि भगवान हमको आदेश दिए हैं कि आप बद्रिकाश्रम जाइए। मैं तो उनके विरह में आतुर होकर के बद्रिकाश्रम के तरफ जा रहे हैं, भगवान हमारी विकलता को देख करके हमको भागवत धर्म की शिक्षा दिए। जब ऐसे उद्धव जी कहे तो विदुर जी कहे कि यदि आप अनुचित न समझें, उचित समझें, तो जो ज्ञान भगवान आपको प्रदान किए तो वही ज्ञान हमको प्रदान कीजिए। उद्धव जी कहे नन्ते तत्व संराध्या, आप ज्ञान लेना चाहते हैं तो आप मैत्रेय ऋषि के पास जाइए, क्योंकि भगवान मैत्रेय ऋषि को यह आदेश दिए हैं कि इस ज्ञान को विदुर को भी प्रदान कर देना। और विदुर जी मैत्रेय ऋषि के पास गए तो अब उनसे कथा सुने तो विदुर जी की स्थिति का वर्णन कर रहे हैं कि निर्वृताशय, वे बहुत आनंद अनुभव किए। आनंद दो तरह से अनुभव कर रहे हैं। एक तो विदुर मैत्रेय ऋषि के मुख से कथा सुन करके उनकी भक्ति बढ़ गई, इसके चलते आनंद स्वाभाविक रूप से अनुभव कर रहे हैं। और खास करके यह बात स्मरण करके कि इस मर्त्य जगत को छोड़ते समय अपने लीला का संवरण करते समय भगवान हमारा भी स्मरण किए, हमको ज्ञान देने के लिए कहे, तो इस बात को जान करके विदुर जी बहुत आनंदित थे। और वे आनंदित हैं लेकिन फिर हस्तिनापुर जा रहे हैं। अब एक प्रश्न होगा कि हस्तिनापुर में क्यों जा रहे हैं। देखिए एक तात्कालिक रूप से आप विचार कीजिए कि प्रचेताओं के प्रसंग में यह वर्णन आया है कि जो प्रचेताओं का प्रसंग सुनेगा तो भाइयों से उसका सौहार्द बढ़ जाएगा। तो अभी तो विदुर जी उसी प्रसंग को सुने हैं तो स्वाभाविक ही उनका स्नेह बढ़ रहा है, पहले से सौहार्द था। तो अपने भाई का हित करने के लिए भ्रातुर ज्येष्ठस्य श्रेयस्कृत, यही शब्द है, वे किसी राग से नहीं गए, बस धृतराष्ट्र का हित करने के लिए। यद्यपि वे कई एक महीने तक रहे और देवत सुखम, वहाँ देवता के समान उनका सम्मान हुआ, लेकिन उस सुख में आसक्त नहीं थे, वे अवसर की प्रतीक्षा में थे कि विदुर जी को कब धृतराष्ट्र को कब उपदेश प्रदान करें। और धृतराष्ट्र को उपदेश प्रदान किए, जब ही धृतराष्ट्र घर से निकल गए तो विदुर जी भी वहाँ से निकल गए। श्रीमद् भागवतम का शब्द है भ्रातृ सुंदर सिद्धात्वा, भ्रातृ सुंदर से भ्रातृ संदर्श तद्वा, विदुर जी धृतराष्ट्र को उपदेश भी दिए और मार्ग भी दिखाए। वे प्रश्न होगा कि मार्ग कैसे दिखाए, तो मार्ग दिखाए क्या जीपीएस लगा देते हैं, लगा दिए होंगे विदुर जी सुनते हुए चले गए, या एक है कि विदुर जी धृतराष्ट्र अंधे हैं तो विदुर जी जब घर से निकले, धृतराष्ट्र घर से निकले तो विदुर जी भी हाथ पकड़ करके साथ में गए। क्योंकि जब धृतराष्ट्र युधिष्ठिर महाराज से कह रहे हैं कि हम अपने भाई को देखने के लिए जाएंगे, तो नारद जी कह रहे हैं कि नहीं पहुंच पाओगे। पहले तो चिंता व्यक्त किए कि वे अंधे हैं कैसे जिएंगे खाएंगे, तो नारद जी कहे कि इसकी चिंता मत करो, सबको जिलाने खिलाने वाले भगवान हैं, तुम व्यर्थ अहंकार मत करो, सब जगह व्यवस्था किए हैं। तो कहे कि अच्छा ठीक है एक बार देखने के लिए जाएंगे, तो नारद जी कहे कि ना तुम देख भी नहीं पाओगे, तुम्हारे पहुंचने के पहले शरीर त्याग कर देंगे। फिर भी विदुर जी युधिष्ठिर महाराज कह रहे हैं कि फिर भी तब तो दाह संस्कार करने के लिए जाना होगा। नारद जी करें कि उसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, वे खुद ही व्यवस्था हो जाएगी। तो फिर कहे कि अच्छा गंधारी को लाएंगे, उसके देखना वो तो सती हो जाएगी। मानो फिर एक विकल्प है, अच्छा विदुर जी का फिर से लाऊंगा कि ना विदुर जी भी वहाँ से चले जाएंगे। तो विदुर जी धृतराष्ट्र के साथ ही हरिद्वार फिर से चले गए थे। तो केवल धृतराष्ट्र के हित के लिए गए। अब इसके बाद कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी कि एतद य श्रृणियाद राजन राज्ञम हरि अर्पितात्मना आयु धनम जसह स्वस्ति गति ऐश्वर्य मापनीयाद। भाई विदुर जी तो बहुत प्रसन्नता किए इस कथा को सुन करके, और दूसरे का क्या होगा। मान लीजिए कि जिसको भक्ति की अभी इच्छा है लेकिन दूसरी भी इच्छा है, तो कह रहे हैं कि जो व्यक्ति कामना से युक्त है और इस कथा को सुनता है, प्रचेताओं की कथा या चतुर्थ स्कंध में जिन राजाओं का उल्लेख आया है जो भगवान के भक्त हैं, तो उसका धन बढ़ेगा, जस बढ़ेगा और उसका मंगल होगा, स्वस्ति गति ऐश्वर्यम आपनीयात। इस कथा श्रवण के विषय में कह रहे हैं कि उसका उसे धन की प्राप्ति होगी, जस की प्राप्ति होगी, स्वस्ति की प्राप्ति होगी, गति की प्राप्ति होगी और ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। और धन समझ रहे हैं, उसे धन मिलेगा, जस मिलेगा, उसकी सुंदर कीर्ति फैलेगी। और स्वस्ति, स्वस्ति का अर्थ है मंगल। इसका आशय है कि उसका पुत्र परिवार भी समृद्धि से युक्त रहेंगे, उसके घर में नाती पोता भरे पूरे रहेंगे। स्वस्ति का यह अर्थ है। सुअस्ति, उसके पारिवारिक स्थिति सुंदर रहेगी। और गति, उस स्वर्ग जाना चाहता है या वैकुंठ जाना चाहता है, जैसे उसकी अभिलाषा है, इसकी पूर्ति हो जाएगी। और ऐश्वर्यम आपनुयात, और उसे पद मिलेगा। और चतुर्थ स्कंध है कि राजाओं के जस सुनने का यह फल, खास करके प्रचेताओं की कथा सुनने से सब प्रकार से मंगल होता है। और इस विषय में कैसे तत्काल लाभ मिलता है, पद्म पुराण में एक कथा उद्धृत की गई है। इसी मथुरा नगरी में एक राजा थे, उनका नाम था परमतप। बहुत प्रतापी राजा थे, धार्मिक राजा थे, प्रजा का खूब सुंदर ढंग से पालन कर रहे थे, लेकिन वे मृगया में बहुत आसक्त थे। मृगया कहते हैं जब राजा लोग मृग का वध करते हैं, पशुओं का वध करते हैं। तो एक दिन की घटना है कि मृगया में इतना आसक्त रह गए कि संध्या हो गई, रात्रि हो गई। अब रात्रि हो गई तो अब क्या करें, तो सोचे कि जंगल में ही रह जाए। तो एक सुदेव नाम के ऋषि थे, तो उनके आश्रम में चले गए। वो राजा आए हैं तो ऋषि खूब स्वागत किए उनका, सब प्रसन्न हुए। तो अब स्वागत को देख करके, वातावरण को देख करके राजा के मन में आया कि यहाँ 7 दिन रहा जाए। 7 दिन रहने का निर्णय लिए। तब तक 5वें दिन की घटना है कि उनको सांप काट दिया। सांप काट दिया, उनकी मृत्यु हो गई। तो जितने सैनिक थे अपने राजा की मृत्यु से बहुत दुखी हुए, सब लोग दुखी हुए। वे जा करके ऋषि से कहे, ऋषि वहाँ आए तो मंत्र से अभिषिक्त करके जल से अभिषेक किए, उसका प्रभाव हुआ कि राजा जीवित हो गए। वैसे जीवित हुए जैसे मानो कोई सो करके जगा है। और मंत्री लोग बहुत प्रसन्न हुए, मंत्री लोग राजा से बतलाए कि ऋषि के प्रभाव से आपको जीवन मिला है। तो राजा भी ऋषि का सत्कार किया और वहाँ से मथुरा के लिए आ गए। मथुरा में आ करके जमुना जी के किनारे एक यज्ञ प्रारंभ किए। यज्ञ राजा कर रहे हैं तो ऋषि भी उस यज्ञ में आए। भाई जिसको जिलाए हैं तो स्वाभाविक उसके यज्ञ में आए, लेकिन यहाँ आए तो राजा देखा कि वे ऋषि आए हैं, लेकिन एक शब्द भी नहीं बोला। ऋषि आए हैं स्वागत करना चाहिए, एक शब्द नहीं बोला, चुप रहे। अब यह देख करके ऋषि को बड़ा क्रोध आया, क्रोध विमूर्छित, वे तो एकदम मूर्छित हो गए और वापस चले गए। वे वापस तो चले गए लेकिन इसका यज्ञ तो भंग हो गया, यज्ञ पूरा नहीं हुआ। अब ये प्रश्न कमिटी को बुलाया, ब्राह्मणों को, क्यों यज्ञ विफल हो गया? तो ये लोग बतलाए कि बहुत भारी आप अपराध किए, ये कृतघ्नता, जो कोई उपकार किया है उसको न मानना बहुत भारी पाप है, इसी पाप से आपका यज्ञ निष्फल रह गया। और कहे कि इसका और भी बुरा प्रभाव आएगा और राजा चंडाल की गति को प्राप्त हो गए और उनके शरीर में कुष्ठ हो गया, कीड़े भर गए। बहुत दुखी हुए, लेकिन ब्राह्मणों के सलाह से उस स्थिति में भी यात्रा प्रारंभ किए। यात्रा के क्रम में वे कुरुक्षेत्र गए। कुरुक्षेत्र में गए तो वहाँ देवल ऋषि चतुर्थ स्कंध की कथा कह रहे थे और वे कथा सुने चतुर्थ स्कंध के, तो उनका रोग भी ठीक हो गया। और थोड़े देर के बाद विमान आया और विमान पर चढ़ करके वैकुंठ चले गए। तो चतुर्थ स्कंध के कथा का बहुत महत्व है, खास करके जो प्रचेताओं की कथा है, इसको सुनने से धन बढ़ता है, जस बनता बढ़ता है, पुत्र परिवार ठीक रहता है और अंततः हम स्वर्ग या वैकुंठ जाते हैं। और इस प्रकार प्रचेताओं के कथा का ये चतुर्थ स्कंध के महात्म्य को कह करके सुखदेव गोस्वामी इस स्कंध का यही विराम देते हैं। हरे कृष्ण।